ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में आज कीव पहुंचेंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं। यात्रा से पहले श्री मोदी ने कहा था कि वे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि एक मित्र और भागीदार के रूप में क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की संभावना है। भारत और पोलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा के कारण ये दोनों के संबंधों में विशेष महत्व का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारतीय विद्यार्थियों को बचाने में पोलैंड की सहायता भारत कभी नहीं भूलेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की मांग पर सहमत हैं। उन्होंने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पोलैंड के समर्थन से भारत और यूरोपीय संघ के संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। श्री मोदी ने कहा कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भौगोलिक मतभेदों, विभिन्न परंपराओं और इतिहास के बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। श्री टस्क ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार होने के कारण पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा करती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संघर्ष समाप्त करने में योगदान देगी। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में कहा कि इस यात्रा से यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 प्रस्तावों में रूसी सैन्य अभियान को समाप्त करने और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर आक्रमण रोकने की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरीका के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका की 4 दिवसीय यात्रा पर वाशिंगटन में हैं। यात्रा के दौरान श्री सिंह अपने अमरीकी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलवन से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री अमरीका रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर जाएंगे। उपराष्ट्रपति गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। श्री धनखड़ अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में धर्म धम्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की अपील और निर्देश को देखते हुए किया गया है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक बयान में कहा है कि वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का संज्ञान लेने और देशभर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना करते हैं। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज देशभर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के इस वर्ष का विषय है चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा जो समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर तक भाला फेंका। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।